कुंकुल आचार्य द्वारा रचित समय सारजी परमागम शास्त्र है। समय सारजी शास्त्र में कुंकुल भगवान ने ब्रह्मांड के भावों पर दिए हैं। ये समय सार को अंधे लोगों की चक्षु बोली जाती है कि जो ये भागवत की शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसको पढ़ के विचार दशा करने में समर्थ हो जाते हैं, वो देखते हो जाते हैं। ऐसी ये अनुपम निधि जो कुंकुल आचार्य भगवान महाविवेक क्षेत्र में खुद स्वयं जाके साक्षात सिमंदर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुन के 8 दिन वहां रह के श्रुत केवलियों के साथ भी चर्चा करके जो वहां से दिव्य ध्वनि का संग्रह करके यहां लाए और वो दिव्य ध्वनि यहां अपन सब मुमुक्त लोगों के लिए परोस दी उसने। ऐसी जो ये समय सारजी परमागम की जो अद्भुत रचना है उसमें ये जो जो अधिकार आते हैं वो सभी अधिकार में भावी भगवान होने के भणकार गूंजते हैं कि हे भव्य आत्मा, हे शुद्ध परमात्म देव, तू तुझे पामर मान के अनादि से प्रवर्त रहा है मगर तेरी पामरता कोई ज्यादा काल तक तू हमारे संग में आया है तो चलने वाली नहीं है। ऐसा ये अद्भुत से अद्भुत समय सारजी परमागम का निमित्तपना अपने को मिला है और वो निमित्तपना का परमागम का अपने शाश्वत स्वयं सार समय सार को बताने वाला है। ऐसा ये अद्भुत परमागम उसमें जो ये संवर अधिकार की अपूर्व और अलौकिक गाथा आई है जिसको अपन लोगों ने वेद ज्ञान के लिए पसंद की है, पूरा समय सार वेद ज्ञान से भरा हुआ है। वो ये एक ही गाथा में, ये तीन गाथा में ही वेद ज्ञान है और संवर अधिकार वहां लिखा गया है, इसलिए दूसरी गाथाओं में से संवर नहीं होता ऐसा नहीं है। ऐसी बहुत गाथाएं समय सार में भरी है कि जैसे ही वो गाथा का भाव ख्याल में आ जाए तो भाव वासन होके अनुभूति का प्रकट जन्म हो जाता है। ऐसा ये परमागम में जैसे कर्ता कर्म अधिकार की गाथाएं है, मोक्ष अधिकार की गाथाएं है, बंध अधिकार की भी गाथाएं है कि कोई भी गाथा आप चुन लो तो उसमें से जो आप आचार्य भगवान जो भाव कहना चाहते हैं वो आचार्य भगवान ने जो लिखा है उसका स्पष्टीकरण 45 साल तक पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने को करके दिया है कि आचार्य भगवान यहां ये कहना चाहते हैं, तेरी समझ में डायरेक्ट शास्त्र समझ में नहीं आ रहे क्योंकि अनादि की अज्ञानता तेरी चल रही है। आचार्य भगवान की कोई कोई भाषा है तो बहुत गूढ़ होती है, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने एकदम सरलतम करके अपने हाथ में ये शास्त्र का मर्म खोल के अपने को पूरा उसका संबोधन इस तरीके से किया कि अपन उसको सुनते ही अपने भगवान आत्मा का अपने को दर्शन हो जाए। ऐसी जो अनुपम निधि अपने को कुंकुल आचार्य द्वारा पूज्य गुरुदेव श्री से मिली तो इसमें जो 181-82-83 गाथा जो समर अधिकार की है उसमें मूल बात जो ये अपन 4 दिन से सुन रहे हैं तो एक न एक बात आती रहती है, उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं है, और अनादि से तू मान के बैठा है कि तेरे उपयोग में क्रोध आ गया है, या तो ये तेरी पर्याय में राग ही चल रहा है, तेरी पर्याय में ज्ञान चल रहा है, उस तरफ तेरी नजर नहीं जाती है। राग होने के समय भी तेरा ज्ञान उत्पाद रूप क्रिया वाला वो उसने तेरे उपयोगवान को आज तक नहीं छोड़ा है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा एक जो तेरा ज्ञान का उपयोग अनादि से ज्ञान क्रिया रूप चल रहा है, भले अनुभूति न हो, भले सदुपयोग नहीं आया हो, सदुपयोग आके भले सुपरिणति नहीं रहती हो, फिर भी वस्तु की व्यवस्था जो अपन सोचे तो वस्तु की व्यवस्था में ये कहना चाहते आचार्य भगवान कि तेरा जो उपयोग है उसमें उपयोगवान प्रतिष्ठित ही है। कोई पदार्थ हो और उसका ही अंश उसमें से आवे और वो अंश में अंश ही न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तेरा स्वभाव अनादि से वर्त रहा है, वर्त रहा है, वर्त रहा है, उपयोग में उपयोग ही है। क्रोधादि नहीं है वो एक बार जान के फिर बार बार याद नहीं करना उसको, बाद में उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोगवान है, वहां दृष्टि को टिका देना होगा तो सहज में शुद्ध उपयोग हो जाएगा। इसी ये जो बात इसमें अपूर्व से अपूर्व आई है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रवेश की भिन्नता है, क्योंकि दोनों के बीच आधारावी संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों की सत्ता पृथक पृथक है, दोनों के बीच में स्वरूप विपरीतता है, इसलिए एक के आधार से वो दूसरी आधार वाली चीज नहीं रहती है, अपना आधार अपना अंश में ही होता है, जो अंश अपने से जुदा पड़े, जो अंश का लक्षण अपने से जुदा लक्षण हो उसको सचमुच में अपना अंश बोला नहीं जाता। राग द्वेष है पुद्गल की संपत्ति, उसमें चेतन की निशानी नहीं है, और पुद्गल की संपत्ति को अपनी मान के अनादि से जीव चल रहा है। अनादि से जीव पर द्रव्य और पर द्रव्य के निमित्त से होता हुआ अपना विकारी और विभाव भाव उसमें अहम करके मिथ्यात्व की दशा में चल रहा है। अनादि से वो मिथ्यात्व को ही संसार बोला गया है, और वो मिथ्यात्व चला जाता है, बाद में राग को लंगड़ा हो जाता है, उसके पैर नहीं रहते, बाद में वो चल नहीं सकता। ऐसा मिथ्यात्व कैसे चला जाए, वो मिथ्यात्व छूट के सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीवों को कैसे हो जाए, इसके लिए आचार्य भगवान ऐसी ऐसी गाथाएं लिखते हैं। मैं आपको अभी बहुत आधार देने वाला हूँ, इसमें से कई गाथाएं ऐसी है जिसमें ऐसी बात आई, समय सार में बहुत सी गाथाएं ऐसी है कि जिसमें यही बात दोहराई आचार्य भगवान ने। तो आचार्य भगवान जब अपनी निर्विकल प्रचुर स्व संवेदन की जो धारा उनकी निरंतर चलती है, उसमें जो सदुपयोग की धारा उसकी चलती रहती है, उसमें सदुपयोग में अपन कलम अपनी ज्ञान रूपी कलम को डुबा के सदुपयोग से, और वहाँ निर्विकल दशा उसकी चलती है, वहाँ से जब वो च्युत होते हैं और विकल्प में आते हैं, तब ऐसी रचना अपने लोगों को निर्विकल्पता में निमित्त पढ़ने के लिए लिखते हैं। ऐसी जो ये अद्भुत रचना है, अलौकिक रचना, आचार्य भगवान का विकल्प भव्य जीवों के निर्विकल्प दशा में निमित्त पड़ता है, ऐसी ये अलौकिक बात है कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में उपयोग बच रहा है, उपयोग में उपयोगवान को लाना नहीं है किसी को, स्थिति ऐसी है कि ज्ञान में ज्ञायक बच रहा है, उपयोग में उपयोग बच रहा है, उसी का नाम ऐसा विचार चले और ऐसा भाव आ जाए और ऐसी श्रद्धा हो जाए उसी का नाम सदुपयोग बोला जाता है। सदुपयोग तो अभी है नहीं, अभी पूज्य गुरुदेव श्री बार बार बोलते हैं कि सदुपयोग में आत्मा है, शुद्ध परिणति में आत्मा है। तो अभी तो अपने पास सदुपयोग नहीं है और शुद्ध परिणति को सदुपयोग वाले को अच्युत होता है, तभी दो भाग पड़ते हैं परिणति और उपयोग के। तो शुद्ध परिणति भी नहीं है तो आत्मा कहां से ढूंढे, आत्मा रहता कहां है फिर? अगर सदुपयोग में ही रहता है, शुद्ध परिणति में ही रहता है, स्व संवेदन में ही रहता है, तो वो उससे पहले कहां रहता है? वो क्योंकि वो उससे पहले अपने लक्षण में विराजमान है, लक्षण अपना उपयोग प्रकट है, उसमें उपयोगवान विराजमान है। ऐसा ऐसी तू श्रद्धा कर ले तो उसी समय सदुपयोग का जन्म हो जाएगा। माने कि सदुपयोग नहीं है, शुद्ध परिणति नहीं है तो आत्मा नहीं है, कि आत्मा नहीं दिखता है, कि आत्मा कहां रहता है, सदुपयोग में ही रहता है, तो उससे पहले आत्मा कहां है? तो तेरे पास तेरा उपयोग अनादि अनंत ज्ञेयभूत अभेदपने वर्त रहा है इसी वक्त सभी जीवों को। निगोद में भी ऐसा स्वरूप है कि भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप अपने ज्ञान में जानने में आ रहा है। अनुभूति स्वरूप यानी ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा अपना नायक देव, अपना शुद्ध चैतन्य देव, अपना परमात्मा, अपना ज्ञान का अंश में अनादि से विद्यमान है और उसमें जानने में भी आ रहा है, बस वो स्वीकार नहीं करता है। और अभी आचार्य भगवान और गुरुदेव के प्रताप से स्वीकार हो जाएगा, नहीं करता है वो याद नहीं करना। अभी स्वीकार में लेने का पुरुषार्थ उठाना कि ऐसा स्वरूप है, ऐसी मेरे पास ज्ञान और नायक की संपत्ति पड़ी है और मुझे मेरा स्वीकार नहीं आवे, वो कैसे हो सकता है? इससे आश्चर्य की बड़ी बात क्या हो सकती है कि मेरा नायक भी विद्यमान, मेरा प्रगट रूप ज्ञान भी विद्यमान, वो ज्ञान में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने में आ रहा है वो भी विद्यमान, और मेरे को स्वीकार नहीं आवे, ऐसा हो सकता है क्या? बहुत बड़ा आश्चर्य है वो जो स्वीकार में नहीं आ रहे, परिग में आना चाहिए स्वीकार में। ऐसी बात आचार्य भगवान बार 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 लिखते रहते हैं। कुंकुल आचार्य ने कहा 17-18 गाथा में कि तू प्रथम में प्रथम तेरे आत्मा को जान ले, दूसरा कुछ जानने का प्रयत्न मत कर। तू आत्मा है, तू शुद्ध चैतन्य परमात्मा है, तू ज्ञायक देव है, तेरे आत्मा में ज्ञान दर्शन स्वरूप वीर्य प्रभुत्व विभुत्व सर्वदर्शित्व और सर्वमत्व सशत्व प्रकाश यदि शक्तियां अनंत पड़ी है तो उसको अवैध रूप से तू पहले में पहले आत्मा को जान। दूसरा सब जानने के लिए तेरे क्षयोत्सव को ताला लगा दे, पहले में पहले आत्मा को जान, ऐसा गुनगुन आचार्य भगवान ने बोला। और पूज्य गुरुदेव जी को नैरोबी गए तो ये गाथा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने, तो पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न किया कि ये तो गुरुदेव श्री आप ये बार बार बोल रहे हो कि प्रथम आत्मा को जानो, प्रथम आत्मा को जानो, प्रथम आत्मा को जानो, ये तो तैयार शिष्य होता है ना, जो जिसको आगम का सब पता होता है, नई निश्चय प्रमाण स्वभाव विभाव उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध ये सब पता होता है, उसको बोला जाता है तैयार शिष्य। ये उसके लिए आचार्य भगवान ने लिखा है कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। मुझे गुरुदेव श्री ने जवाब दिया कि ये तैयार शिष्य की बात नहीं है, यहां आचार्य भगवान ने पात्र शिष्य की बात लिखी है। कि जिसको अंदर में जिसकी पात्रता पक गई है ऐसा उसने देखा है, इसलिए ऐसा लिख दिया है कि प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। अपन तो सब गुरुदेव से सब आचार्य भगवान की बातें सुन के अपने को तो सब पता चला है कि नहीं नित्य प्रमाण क्या होता है, उपादान निमित्त निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध, ये तो सब अपने को पता है, तो अपने लिए तो ये बहुत सरल है। वहां नैरोबी में तो नए मुमुक्त थे जिसको भक्त भक्त का भी विवेक नहीं था, उधर जाके पूज्य गुरुदेव श्री ने छठवीं गाथा, ग्यारहवीं गाथा, चौदहवीं गाथा, पंद्रहवीं गाथा, सत्रहवीं गाथा, इक्कीस गाथा, अड़तीस गाथा, जो मूल दृष्टि का विषय को और ज्ञान का यथार्थ स्वरूप को बताने वाली गाथा है, ऐसी गाथाएं उधर भी थी पूज्य गुरुदेव श्री ने। और इसी साल में जब उसका यहां से स्वर्गारोहण जाने में मात्र 11 महीने बाकी थे, तब ऐसी गाथाएं भी थी उधर। तो अपने को समझना चाहिए कि ये गाथाओं में कितना रहस्य होगा, कितना प्राण अपना जीवंत जीवत्व का प्राण उसमें भरा होगा। तो कुंकुर आचार्य ने बोला कि प्रथम आत्मा को जान, और अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में लिख दिया कि आओ अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है। कुंकुर आचार्य बोला आत्मा को जान, अमृतचंद्र आचार्य बोले कि तुझे आत्मा जानने में आ रहा है। एक बोले आत्मा को जान, एक बोले आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसा तू जान। आचार्य भगवान के जो लिखने की बात जो होती है ना, उसमें सब में अमृत के बूंद टपकते हैं। वो अमृत के बूंद अपने को पीना है, उसको सही समझ के अपन अपना भाव को उसके भाव के साथ मिला ले ना, तो उसको सम्यक दर्शन करना है, ऐसा भाव ही नहीं आएगा और सम्यक दर्शन के ढेर हो जाएंगे। ऐसी ये अद्भुत से अद्भुत गाथा है। अभी ये गाथा का संदर्भ 69-70 गाथा में भी ये बात आई है कर्ता कर्म अधिकार में, ज्ञान क्रिया स्वभाव भूत होने से। ज्ञान क्रिया को क्या बोला कि वो स्वभाव भूत है, करोति क्रिया, रागादि क्रिया, क्रोधादि क्रिया वो सब विभाव भूत है। ज्ञान क्रिया स्वभाव भूत होने से उसका निषेध नहीं हो सकता, क्योंकि वो ज्ञान क्रिया में आत्मा प्रतिष्ठित है, इसलिए वो ज्ञान क्रिया स्वभाव है। जैसे उपयोग में उपयोग है, जैसे अनुभूति को भगवान आत्मा जानने में आ रहा है, ऐसे ज्ञान क्रिया स्वभाव होने से उसका निषेध नहीं हो सकता है। कितना भी दृष्टि का विषय में जीव पारंगत होए, और अगर ज्ञान क्रिया में आत्मा जानने में आता है, उसका निषेध की लाइन पे चल जाए, उसको अनुभव नहीं हो सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने तो ये प्रवचन में ऐसा बोल दिया, 69-70 गाथा का प्रवचन सुन लेना आप सब लोग गुरुदेव का, उसमें ऐसी बात चली नहीं, ये ज्ञान क्रिया स्वभावभूत होने से निषेध में नहीं आती है, ये स्वभावभूत है, स्वभावभूत है। तो फिर किसी ने प्रश्न पूछ लिया दृष्टि के विषय के बारे में, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि अभी ये चर्चा चल रही है ज्ञान क्रिया और ज्ञायक की, तो दृष्टि को उसके घर में रखो, दृष्टि का विषय को उसके घर में रखो, यहां चर्चा ज्ञान की चल रही है। जब दृष्टि का विषय की बात आवे तो दृष्टि का विषय में उत्पाद को भी संयोग बोला, वो दृष्टि का विषय की चर्चा है, छठवीं गाथा की चर्चा, ग्यारहवीं गाथा की, 320 गाथा की, उसमें जब आवे कि प्रमत अप्रमत नहीं है, नायक भाव में हूं मैं, शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूं मैं, ध्रुव हूं मैं, अनादि अनंत अखंड वस्तु हूं मैं, सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य वो ही मैं हूं, वो बात चले तब ज्ञान क्रिया को छेड़ना नहीं, और जब ज्ञान क्रिया की बात चले तो ये ज्ञान क्रिया से भी आत्मा सामने में आता है ऐसा स्वीकार में अनुभूति होती है। 69-70 गाथा में ये बोला, फिर 71 गाथा में भी वही बोला कि स्व का परिणमन है वही स्वभाव है, स्वस्य भवनम इति स्वभाव, स्व का भवन को स्वभाव बोला जाता है। फिर 92 गाथा में तो बहुत अच्छी बात आई, बहुत अच्छी माने मार्मिक से मार्मिक बात। 92 गाथा है, 92 गाथा में अज्ञानी की बात की है, और 93 गाथा में वो अज्ञानी ज्ञानी कैसे हो जाता है उसकी चर्चा आई है। बहुत अच्छी गाथा है 92 गाथा। उसके बाद में 270 गाथा में भी ये बात है, 8वें कलश में भी ये बात है। ऐसी बहुत गाथाएं है संविधान में कि जिसमें ज्ञान में आत्मा प्रतिष्ठित है और क्रोधादि उससे पृथक ही है, ऐसा आचार्य भगवान का प्रमाण अपने पास संविधान में पड़ा। रागादि भाव जो होते हैं ना, रागादि भाव प्रत्येक समय में बहिर्लक्षी पर्याय में जो चलते रहते हैं, वो सचमुच में राग की उत्पत्ति होती कैसे है सचमुच, और क्यों हो जाती है राग की उत्पत्ति? अभी रागादि भाव पृथक तो है, ये तो अपन ने मान लिया आचार्य भगवान ने बोला तो, मगर उसकी उत्पत्ति समय 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 में क्यों होती रहती है, तो क्यों छूटता नहीं है राग? राग पृथक है, ज्ञान में आत्मा बस रहा है ये बात सुनी, मगर राग तो चल रहा है। तो राग चल रहा है तो वो कैसे आता है और क्यों आ जाता है और कैसे चला जाए और कैसे ज्ञान में ज्ञायक प्रतिष्ठित हो जाए, इसकी विधि ये 92-93 गाथा में दी है आचार्य भगवान। मैं थोड़ा पढ़ता हूं, 92 गाथा और 93 गाथा, कर्ता कर्म अधिकार की गाथा है। अज्ञान से यह आत्मा पर का और अपना परस्पर विशेष तफावत नहीं जानता हो, तब पर को अपने रूप और अपने को पर रूप खुद अज्ञान में होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासता है। पर को अपना रूप जानता है और अपने को पर रूप जानता है, तो कर्म का कर्ता होने होता प्रतिभासता है, उसको स्पष्टता से समझाने में आता है। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ एवं शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था, उद्गल से अभिन्नपना के कारण आत्मा से सदाय अत्यंत भिन्न है। ये शीत उष्ण की अवस्था तो बाहर के पदार्थ है, वो तो नौ कभी ले जाते हैं शरीर और शरीर के बाहर के सब पदार्थ, और उसके निमित्त से होता वो प्रकार का अनुभव, मान कि उसका निमित्त पड़ा है और उसके निमित्त से जो यहाँ ज्ञान होता है अनुभव यानी ज्ञान, वो अनुभव आत्मा से सदाय उसका निमित्त से जो प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नपना के लिए पुद्गल से सदाय अत्यंत भिन्न है। जो ज्ञान है वो आत्मा से अभिन्न है और शीत उष्णपना पृथक है, मगर पृथक है उसका ज्ञान होता है, वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न है मगर वो पदार्थ तो पृथक है। ऐसी प्रकार अनुभव कराने में समर्थ ऐसी राग द्वेष सुख दुखादि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, राग द्वेष सुख दुख आदि रूप उद्गल परिणाम की अवस्था लिखी है इसमें, उद्गल से अभिन्न बनाने कारण आत्मा से सदाय अत्यंत भिन्न है। आत्मा का ज्ञान आत्मा से अभिन्न है और राग द्वेष उद्गल परिणाम की अवस्था उद्गल से अभिन्न है, और उसका निमित्त से जो प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नपना के लिए उद्गल से सदाय अत्यंत भिन्न है, माने कि ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, ठीक उष्ण अवस्था और राग द्वेष की अवस्था वो पुद्गल से अभिन्न है और ज्ञान आत्मा से अभिन्न है, और ज्ञान से ये राग द्वेष सुख दुख और ज्ञान से शीत उष्ण अवस्था दोनों पृथक पृथक है। जो अज्ञान के कारण आत्मा राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसका अनुभव का परस्पर विशेष माने की तफावत न जानता हो, तब एक पणा का अध्यास से ऐसा तफावत जब तक नहीं जानता है तब तक उसको एकत्व चलता है, उसका एक पणा का अध्यास हो गया है। अध्यास माने बार 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 ऐसा ही चलता रहता है, एक पणा का अध्यास के लिए शीत उष्ण की माफक अर्थात जिन शीत उष्ण पणे आत्मा वाले परिणाम ना अशक्य है ऐसे ही जिसके द्वारा आत्मा वाले परिणाम ना अशक्य है ऐसा राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा वाले परिणमता हुआ परिणम या हुआ नु मानता हुआ ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता है। ज्ञान में आत्मा राग है पुद्गल का शीत उष्ण वाला पणा है पुद्गल का मगर एक पणा का अध्यास समाधि से चलता है इसलिए समय 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 में ज्ञान का अज्ञानत्व हो जाता है ज्ञान का अज्ञानत्व हो जाता है। और ये बाणु त्राणु गाथा में ये जो आया बाणु में ये आया और त्राणु में उससे उसी से जुदाई वाला होता है कि ऐसा जो मान लेता है कि ज्ञान ज्ञान आत्मा से अभिन्न है और राग द्वेष और शीत उष्ण पणा उद्गल से अभिन्न है ऐसा मान लेता है उसको ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकट हो जाता है। तो अभी ये ज्ञान का अज्ञानत्व हो गया और ज्ञान का ज्ञानत्व हो गया तो अभी ज्ञान का अज्ञानत्व होने में राग द्वेष वो वाले भाव चलते हैं राग द्वेष जो वो इसमें लिखा कि उद्गल से अनन्य है तो इस पे क्या कहना चाहते हैं। देखो भैया ऐसा है कि शीत उष्णपना को नवकर्म की अवस्था है और राग द्वेष का अनुभव सचमुच में द्रव्य कर्म में पड़ा है। सुनना बड़ा करते हैं राग द्वेष का अनुभव जो है ना प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभव जो बंद की व्याख्या आती है ना उसका अनुभव है ना द्रव्य कर्म में पड़ा है द्रव्य कर्म में पड़ा है। तो द्रव्य कर्म में कैसे आया तो अनादि से जीव अज्ञान रूप परिणमता है तो वो अज्ञान रूप का परिणमन का निमित्त से द्रव्य कर्म में जो बंध होता है वो बंध वाला द्रव्य कर्म की स्थिति में वो राग उधर अनुभाग उसका पड़ा है वो उसको क्या बोला जाता है वो है निमित्त में राग। निमित्त में राग है अभी यहां कैसे राग हो जाता है राग तो निमित्त में है। नैमित्तिक अवस्था जो होती है वो कभी निमित्त के लक्ष्य के बिना नहीं होती। नैमित्तिक अवस्था जो प्रकट होती है अपन निमित्त नैमित्तिक संबंध लगाते हैं कल अपन ने क्षणिक उपादान कर दिया था आज निमित्त नैमित्तिक से लेते हैं क्षणिक उपादान से राग होता है वो भी सत्य बात है निमित्त नैमित्तिक से राग होता है वो भी सत्य बात है। एक ही पर्याय में एक पर्याय को दो तरह से देखी जाती है एक तो उसको क्षणिक अशुद्ध उपादान से राग को देखो तो वो षटकारक से हुआ है अभी षटकारक से हुआ षटकारक से हुआ षटकारक से हुआ तो राग ही क्यों होता रहता है तो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है एक ही परिणाम में है। एक ही परिणाम को किस तरीके से आप देखते हो कि उसको क्षणिक उपादान से देखो क्षणिक अशुद्ध उपादान से देखो तो राग सत्य है अपने कर्ता कर्म करण संप्रदान उपादान अधिकरण से उसका होना है। अभी वही समय वो राग हुआ तो कैसे हुआ तो राग में पहले तो वो पर्याय में आत्मा से वो पर्याय च्युत हुई इसलिए यहां राग हुआ। दूसरा ये है कि उसने निमित्त का संग किया इसलिए राग हुआ ऐसी दो बातें हैं। अभी अनादि से आत्मा का संग तो उसको छूटा हुआ ही है अभी अनादि से क्या चल रहा है निमित्त का संग छोड़ा नहीं उसने निमित्त का लक्ष्य छोड़ा नहीं अभी निमित्त में राग होता है निमित्त का लक्ष्य करता है द्रव्य कर्म का लक्ष्य जाता है तभी यहां नैमित्तिक राग उत्पन्न होता है। वास्तव में राग का वहां पे द्रव्य कर्म में अनुभव पड़ा है और वो निमित्त बनता है उसका उदय आता है और यहां पर्याय का उदय है और पर्याय निमित्त को लक्ष्य करके प्रगति है तब यहां राग की उत्पत्ति होती है। अभी ये समयवर्ती है राग राग भी समयवर्ती है राग को अपना मानने वाला विद्या तो भी समयवर्ती है आगे पीछे नहीं है कहीं स्टॉक कोई जगह स्टॉक नहीं है। जिस समय वो अपने आत्मा को भूलता है और निमित्त को लक्ष्य बनाता है तब यहाँ राग और मिथ्यात्व की पर्याय प्रकट होती है ये अज्ञानी की बात चलती है ज्ञानी की बात अलग है उससे थोड़ी। तो वहां कर्म का द्रव्य कर्म में राग है वहां निमित्ता लग करके यहां नैमित्तिक में राग प्रकट होता है। अभी इसमें लिखते हैं कि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध जो है उसको तो मुद्गल में रख, राग की सत्ता को तो मुद्गल में देख, जब मुद्गल में जान लेगा राग मेरे में नहीं है, मैं तो ज्ञान नहीं, मेरा तो ज्ञान का ही परिणाम है, वही मेरा परिणाम है। आत्मा जैसा है ऐसा ही उसका परिणमन होवे, उसको ही आत्मा का परिणमन बोला जाता है। जो परिणाम आत्मा का जैसा परिणाम प्रकट होवे उसको आत्मा का परिणाम बोला जाता है, जो परिणाम आत्मा जैसा प्रकट नहीं होवे वो परिणाम आत्मा का नहीं है मगर जिसके जैसा है उसको उसका बोला जाता है। इसीलिए ये दोनों की पृथकता अनादि से है ऐसी ही, ज्ञान में नायक ही प्रतिष्ठित है और वो ज्ञान में नायक जानने में आ रहा है। रागादि भाव भीमपणा से प्रतिभाषित होते हुए भी जब तक उसकी नजर भीमपणे प्रतिभास होता हुआ ज्ञान में, ऐसा ज्ञान में ज्ञेयाकार रूप ज्ञानाकार बनता है और वो ज्ञेयाकार ज्ञान में जब तक वो अहम करता रहता है तब तक उसका अहम राग में ही चलता है। अहम उसका ज्ञेयाकार ज्ञान में होता रहे अनादि से अनादि से अनादि से अनादि से, राग तो प्रथम सत्ता है, अनादि से उसको ज्ञेयाकार ज्ञान में राग प्रतिभासित हुआ दिखता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मेरा ही परिणमन है। सचमुच में परिणमन वो ज्ञान का है और वो ज्ञान में आत्मा प्रतिष्ठित है, वो ज्ञान में राग आता ही नहीं कभी। कोई चीज दिखे इसलिए वो उससे थोड़ी आ जाती है, वो तो दिखती है और ज्ञान में आत्मा तो जानने में आ रहा है, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा बाल गोपाल सबको अनुभव में यानी जानने में आ रहा है। ऐसी यहाँ अद्भुत से अद्भुत बात लिखी 92 और 93 का था, ज्ञान का ज्ञायक से अभिन्न बना होने से और राग द्वेष का कुशल से अभिन्न बना होने से दोनों की पृथकता है ही, पृथकता करनी नहीं है उसको, ये ऐसा जाना उसको बोला जाता है पृथकता हो गई। क्योंकि एक में खोने तो कभी पृथकता हो नहीं सकती, जुदाई हो तो ही पृथकता हो सकती है, तो ही पृथकता जान सकता है। अगर एक में खो गया हो रात के साथ ज्ञान तो वो कभी ज्ञान से रात पृथक नहीं हो सकता। वो राग मिश्रित ज्ञान जो बोला जाता है ना, वो राग मिश्रित ज्ञान यानी ज्ञान में राग का प्रतिबिंबित होता है। यहाँ ज्ञान की स्वच्छता ऐसी बच गई है, ऐसी बच गई है कि लोकालोक झलकता है। केवल ज्ञान में जैसे लोकालोक झलकता है ऐसे यहाँ क्षयोत्तम ज्ञान के अनुसार झलकन होती है, तो ये झलकन चलती रहती है और वो झलकन चलती है उसमें उसका लक्ष्य कहाँ जाता है उसके ऊपर उसका ज्ञान और अज्ञान का आधार रहता है। अगर उसका लक्ष्य में ऐसा चलने लगे कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मेरे में तो ज्ञायक बस रहा है, ये ज्ञेयाकार हो रहा है, वो सचमुच में तो मटेरियल ज्ञान का है, वो तो ज्ञेय के निमित्त से उसको ज्ञेयाकार बोला जाता है मगर ये तो वो ज्ञान का आकार ज्ञानाकार। वो 87 गाथा आती है ना, अपने को कब तक लेने का है, 87 गाथा है, में एक मोर का दृष्टांत है, मोर का सबको पता होगा, वो मोर का दृष्टांत है ना, तो मोर की झलक अरीसा में पड़ती है, तो अरीसा में क्या दिखता है, मोर दिखता है, मोर दिखता है ना, और अरीसा भी दिखता है, दोनों दिखता है, वो सौकर प्रकाशक है ना, तो मोर भी दिखता है अरीसा भी दिखता है, तो उसको वो पर प्रकाशकता पर जब तक लग जाता है तो भ्रम चलता ही रहता है कि मोर अरीसा में ही है, समझे, अरीसा सचमुच में तो अरीसा नहीं होवे तो मोर ही नहीं होवे, तो वास्तव में दिखता तो है उसको आईना, दर्पण दिखता तो दर्पण ही है। अगर दर्पण ना हो तो मोर कैसे आएगा उसमें, आ ही नहीं सकता मोर। अभी उसने बहुत प्रयत्न किया मगर मोर उधर से निकलता ही नहीं है, एकदम बचा हुआ है उसने। वो कितनी कोशिश करता है वो निकलता ही नहीं है, कितना उसने प्रयत्न कर दिया कि इसमें से इसको निकाल दो। इसमें एक गजब की घटना होगी, इसमें कोई जोर से पत्थर की आवाज आई, इतने जोर से पत्थर की आवाज आई तो मोर ने ऐसा बोला कि मैं यहां हूं। क्या बोला? मैं यहां हूं। तो वो टौका बोला उसने कि मैं यहां हूं। तो उसने देखा कि ये दर्पण में मोर तो है नहीं, आवाज तो यहां से आ रही है। तो वहां उसकी नजर गई तो उसको पता चला कि ये तो मेरे को तो दर्पण ही दिखने में आता है, मोर था, मोर चला गया मैं यहां हूं करके, तो उसको दर्पण ही दिखने लगा। तो उसको पता चला कि ये जब मोर था ना तब भी दर्पण ही दिखता था, और मोर चला गया तब भी दर्पण ही है, राधा जी भाव है ही नहीं वहां, ज्ञान में ज्ञायक ही बनता है। तुझे भ्रमणा हो गई है, जलकन देख के अपना मान लेता है भाई, ज्ञान में ज्ञायक ही बस रहा है अनादि से, माने कि मैं ज्ञायक ही हूं, मैं चैतन्य परमात्मा ही हूं, मेरी ध्रुव सत्ता ही है और वही मेरे ज्ञान में अनुभव में आ रही है, आ रही है, आ रही है। उसी को बोला जाता है कि ये जीव को वास्तव में ज्ञान और आत्मा की समझ हो गई। अगर समझ हो गई तो समझ के पीछे उसकी दृष्टि वहां पे ही जाती है। सच्ची समझ ज्ञान के बिना कभी नहीं होती है, और ये ज्ञान जो है वो प्रगट लक्षण है, और वो प्रगट लक्षण में ज्ञायक बस रहा है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव न होवे ने तो कोई अज्ञानी भी नहीं हो सकता है, और स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव नहीं होवे तो कोई ज्ञानी भी नहीं हो सकता है। माने कि ये एकदम ज्ञान का स्वपर प्रकाशक स्वभाव यथार्थ है, उसमें ही वेदना चलता है, स्वभाव है स्वपर प्रकाशक, मगर ज्ञाकार को तिरोभूत करके, ज्ञानाकार को आविर्भूत करके जहां अपनी दृष्टि नायक पे लगती है तो स्वपर प्रकाशक में स्वप्रकाशक पूर्वक जीतने से स्वपर प्रकाशक प्रकट हो जाता है। ऐसी ये अपूर्व बात है, गाथाओं में कितनी गाथाओं में कितने कलश में ये आए हैं कि ये झलक रहा है, अवभासन हो रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, फिर ऐसा भी लगे लिखे कि जान भी रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। अपने को उसका भाव पकड़ जाना चाहिए, शब्द की मारामारी में बहुत फंसना नहीं, शब्द आचार्य भगवान के कोई भी हो, अपना भाव में उसका चित्रीकरण कैसे होता है, उसमें अपना अभिप्राय कैसे बनता है, वहां पे उसकी कीमत है। उसमें खाली शब्द 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 से अपन उसका निराकरण करते रहेंगे तो एक जगह एक शब्द आएगा, उसी का विरोधी दूसरा शब्द दूसरी जगह आएगा। तो सब चीजों में अपेक्षा लगा के चीज करना, उसको वो अपेक्षा लगा के चीज करना, उसको वो अपेक्षा लगा के चीज करना, उसका मतलब ये कि विकल्पों की इंद्र झाड़ तेरी नहीं छूटेगी। माने को तू यथार्थ स्वरूप को एक बार समझ ले कि आत्मा है, उसका ज्ञान रूप स्वभाव है, प्रति समय वो ज्ञान क्रिया चलती है, और उसके साथ में अनादि से निमित्त का लक्ष्य करके राजा की भाव चल रहा है। जब निमित्त का लक्ष्य छूट जाता है और ज्ञायक का लक्ष्य हो जाता है तो वहां विद्रता हो जाती है। तो इतना ही वर्तुल है, इसमें ज्यादा बाहर नहीं जाना, इसी में नहीं इसी में वेदनान करना और इसी में नहीं इसी में अवेद में चले जाना। ऐसा ये 92-93 का प्रकरण बहुत अद्भुत है। अभी दूसरा ये ज्ञान क्रिया की सिद्धि में कर रहा हूं। आप समझना कि ज्ञान क्रिया स्वभावभूत कैसे है, ज्ञान का अंश में ज्ञायक कैसे प्रतिष्ठित है, ऐसी समझ अपनी बन जाए तो अपने को दृष्टि का विषय का राग चल रहा है और जो पर्याय के प्रति उपेक्षा की जगह द्वेष चल जाता है दृष्टि का विषय का खेचा में, वो नहीं चले और राग द्वेष की जगह वितरागता का जन्म हो जाए और वास्तविक में द्रव्य पर दृष्टि चली जाए, पर्याय का सम्यक ज्ञान हो जाए और वो पर्याय द्रव्य से कथनचित अन्य हो जाए। ऐसा है कि ये बात क्यों चल रही है, ये ज्ञान का अंश में ज्ञायक प्रतिष्ठित है, ज्ञान में ज्ञायक विद्यमान है, ये बात क्यों चल रही है, ये बात यहाँ यहाँ आधार देके और ये गाथा में है, तो क्या होता है कि कोई दृष्टि का विषय का पक्ष में खींच मत जाना, क्योंकि क्या हो रहा है कि दृष्टि का विषय की बात तो बहुत आती है और आदरणीय चीज तो वही है, दृष्टि का विषय ही आदरणीय है, वहां अहम होने के बिना ज्ञान का सम्यकपना कभी नहीं होता है। मगर ऐसा होता है, मगर अगर पक्ष से ही तो उसको देखा करेगा, ज्ञान की पर्याय पर लक्ष्य करके तेरी चलती रहे, ज्ञान में पर प्रकाशक पना में ही तेरा अहम माने कि जानना पर प्रकाशक का ही चलता रहे और दृष्टि का विषय में मैं शुद्ध हूँ, मैं अखंड हूँ, मैं लायक हूँ, मैं एक हूँ, मैं परम परिणामी भाव हूँ, ऐसा खाली तू बोलता रहे तो उसको बोला जाता है द्रव्य का राग और उसको बोला जाता है पर्याय की उपेक्षा न करके पर्याय का द्वेष। ऐसा अंदर में द्रव्य प्रति राग में पर्याय प्रति द्वेष चले तो वो पर्याय तेरे को जवाब नहीं देगी। उपेक्षा जरूर होनी चाहिए उत्पाद वाला भाव की, मगर कहीं अपने भाव में ऐसी द्वेष बुद्धि तो नहीं हो जाती है ना दृष्टि का विषय को सुन के,
ये क्यों
है, ये पक्ष हो जाता है कि मैं तो शुद्ध ही हूँ, मेरे में पर्याय है ही नहीं, मैं तो अनादि अनंत हूँ, पर्याय में अनुभव हो के नहीं हो, मैं तो शुद्ध हूँ, मेरे को क्या जरूरत है पर्याय में अनुभव की, अनुभव की मूर्ति हूँ, अनुभव की मूर्ति तो है, नायक तो है, सुख तो है, अखंड तो है, मगर अनुभव हुआ क्योंकि वो विकल्प है, वो नई पक्ष में जाता है, वो ऐसा नई पक्ष में मत रुकना, बैलेंस से सोचना, मध्यस्थता रखना, ज्ञायक और ज्ञान दोनों की मध्यस्थता करने वाले की दृष्टि द्रव्य पर जाती है, उसको अंदर से ही स्वयं में ज्ञायक हूं ऐसा भाव प्रकट हो जाता है, उसको फिर पुरुषार्थ ऐसा नहीं करना पड़ता, उसको बेचना नहीं पड़ता मैं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं ज्ञायक हूं, ऐसे नहीं होता, वो समझ से ही दृष्टि द्रव्य पर चली जाती है, वो सर्वाणी जो है ना अंदर की वो ध्रुव में से ऐसी ही प्रकट होती है कि वो उत्पाद ध्रुव को प्रतीत करके ही हो जाता है, ऐसी सहज स्थिति है। मगर समझ सही हो तो सहज है, अगर समझ में गड़बड़ हो, दृष्टि का विषय है वहां उसको दृष्टि का विषय से ही जानना चाहिए और ज्ञान का पड़खा की बात चलती है तो ज्ञान भी एक स्वभाव है द्रव्य का, कोई विभाव नहीं है, वो अंश से ही अंशिंग का है, पुद्गल का नहीं है, वो अंश में अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानने का आ रहा है, ऐसा आचार्य भगवान कहते गुरुदेव फरमाते, तो तू उसको क्यों आगे नहीं कर रहा, उसी के ऊपर, क्योंकि वो क्या है, वो प्रगट है, ज्ञायक तो उसकी अपेक्षा अप्रगट है, प्रगट लक्षण से लक्ष्य पकड़ में आता है, प्रगट लक्ष्य ने वो अनुभव प्रकाश प्रदीप चंद जी ने बोला है कि ज्ञान की दोरी 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 चला जाए तो ज्ञायक उधर ही है, ज्ञान की दोरी पकड़ ले तो उधर ही ज्ञायक है, तुझे तुरंत दिखेगा, ऐसी बात है। अभी इसमें एक और भी 270 गाथा 270 गाथा 270 वो बंद विकार की बात है, उसमें अध्यवसान की बात है। मैं परजीव को मार सकता हूँ, परजीव को जिला सकता हूँ, उसका नाम अध्यवसान बोला। इसमें ऐसा लिखा है 270 गाथा में प्रकरण आया है कि अध्यवसान के समय भी, जब वो अध्यवसान का समय है, जब ऐसा बहिर्मुख भाव चल रहा है, उस समय भी उसकी सतरूप जानन रूप ज्ञान क्रिया ऐसी रहती रहती है। उसमें सतरूप ज्ञान क्रिया के सामने हनन क्रिया ली है, ज्ञायक के सामने नारक की पर्याय ली है, और ज्ञान के सामने ज्ञेय लिया है, गुण के सामने ज्ञेय लिया है। ऐसा पृथक्करण करके जब तेरी विभाव रूप क्रिया चल रही है कि मैं पर को जानता हूँ, पर को मार सकता हूँ, पर को बचा सकता हूँ, ऐसी पर्सन मुक्ता वाली तेरी प्रवृत्ति चल रही है, उसी समय सतरूप अहेतुक ज्ञान क्रिया तेरी बच गई है। और वो सतरूप ज्ञान क्रिया ऐसी है कि वो सतरूप ज्ञान क्रिया में नायक विद्यमान है, भक्ति क्रिया। तो अभी क्या चल रहा है अज्ञानी जीव को, बहिर्भक्ति क्रिया चल रही है ना, प्रति समय में उसका बहिर्मुख भाव चल रहा है। उस समय भी वो ज्ञान का अंश जीवंत मौजूद है कि वो जीवंत मौजूद अंश में ज्ञायक प्रतिष्ठित है, उसमें क्रोधादि भाव रागादि भाव कुछ नहीं है। ऐसा ज्ञान में ज्ञायक बस रहा है, ऐसा मैं चैतन्य परमात्मा हूं, ऐसा मैं अखंड तत्व हूं, ऐसा मैं नित्य निरावरण तत्व हूं, ऐसी मैं ज्ञान ज्योति हूं, ऐसी मेरी आत्म ज्योति प्रति समय प्रकट है। ऐसी अद्भुत बात समय सार में इतना माल भरा है, इतना माल भरा है कि पूज्य गुरुदेव श्री तो रोज एक बार तो समयसार का स्वाध्याय चले ही चले 45 साल में 19 बार जाहिर में उसने समयसार पढ़ा, सैकड़ों बार को अंदर में पढ़ा। 78 में उसके पास समयसार आ गया और 82 में उसके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया। तो समयसार आया तो तुरंत उसके मुख से निकला ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, पढ़ते ही रहे, 13 साल तक उसने इसका अध्ययन सूक्ष्मता से किया और 4 साल के बाद में 82 में उसके पास मोक्ष मार्ग प्रकाशक आया। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक हाथ में आया तो खाना पीना बंद हो गया उसका। वो सवेरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक लेके चले जाते थे और वो झाड़ के नीचे बखोल में अंदर चले जाते थे, खाली पानी लेके जाते थे उधर, और शाम को उधर न उधर पानी पी के उसका काम खत्म कर देते थे और फिर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ने लगते थे। कितना उसको महिमा आया होगा उसका, कितनी उसको समयसार की महिमा आई होगी। 13 साल तक ऐसा अभ्यास करके दिगंबर शास्त्र को एक के बाद एक उसने इतना संशोधन किया, इतना संशोधन किया कि वो संशोधन में वो परिपक्व हो गए। जब कि मैं तो संप्रदाय में था तो मैं परिवर्तन करूंगा तो हजारों लाखों प्रश्न मेरे सामने आएंगे, तो उसकी श्रद्धान बड़े हो, मगर ज्ञान की परिपक्वता भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कोई भी कोने में से प्रश्न आ सकता है कुछ भी। तो उसकी अंदर की ज्ञान की इतनी परिपक्वता उसकी हो गई तब उसने 13 साल के बाद में परिवर्तन किया है। ऐसे ही अपने परम धर्म पिता है कि अपने लिए उसने कितनी मेहनत की है, कितना पुरुषार्थ किया, कितना अंदर में संशोधन किया। आचार्य भगवान के एक एक शास्त्र की एक एक लिटि को अंदर में से उसमें से अपना नायक देव को चुन के, नायक देव को ढूंढ के अपने सामने रख दिया कि ये तेरा आत्मा इधर है, उधर सोच तू, उधर ढूंढ, तेरा आत्मा उधर ही मिलेगा तुझे। तेरी ज्ञान क्रिया प्रकट है, मौजूद है, शाश्वत पड़ी है, वो भी नित्य अनादि अनंत चल रही है, उसमें ही तेरा नायक देव बस रहा है और तू परमात्मा है। पामर हूं ऐसा छोड़ दे तू, एक समय की पर्याय की पामरता को मत याद कर, क्योंकि वो दूसरे समय में तो पारिणामी भाव हो जाती है। संसार समयवर्ती है, आगे पीछे नहीं है, पारिणामी भाव अनादि अनंत है। एक समय की पर्याय में संसार है और दूसरे समय तो वो पारिणामिक भाव हो जाती है। तो पारिणामिक भाव की दृष्टि कर, उसका ज्ञान कर, उसको ढंडोल, उसका संशोधन कर अंदर है कि कहां पेड़ा खड़ा है मेरा ज्ञायक देव, कहां पेड़ा है मेरा भूतास स्वभाव, कहां पड़ा है मेरा अपरिणामी आत्मा। जिसे सोगाली जी थे तो एक रात में उसको ज्ञान और रात की जुड़ाई सवेरे मालूम पड़ गई रात को। वो जब गुरुदेव का प्रवचन सुनने को गए, जिस दिन उसको सम्यक दर्शन सवेरे में हुआ, वो गुरुदेव का प्रवचन सुनने को बैठे तो गुरुदेव ने बोला कि ज्ञान और राग भिन्न है। ऐसा गुरुदेव का जो स्पष्टीकरण आया तो वहां बैठे बैठे उसने ऐसा निर्णय किया कि ये कहने वाला जो जीव है वो गुरुदेव है, वो ऐसा कह रहा है कि ज्ञान और राग भिन्न है, वहां भी जीव है, मैं भी जीव हूं, तो उसका ज्ञान और राग भिन्न है तो मेरा ज्ञान और राग तो भिन्न ही है। ऐसा निर्णय उसी समय उसको हो गया और वो निर्णय की झोली अंदर में लेके फिर वो बैठे थे रसोड़े में और उसने क्या किया पूरी रात कि ये जो निर्णय किया था ना, वो निर्णय को दृढ़ किया। बस वो निर्णय का दृढ़ता का फल अनुभूति है। तो निर्णय की बहुत कीमत है ये मार्ग में। जिसको ऐसा निर्णय आता है, जिसको ऐसा निर्णय में दृढ़ता करने लगती है, उसको अल्प काल में अपनी अनुभूति नियम से होती है। ऐसा ये अद्भुत गाथा है, ऐसी अद्भुत मार्ग है, सभी जीव भवी जीव ऐसी गाथा और ऐसा आचार्य भगवान का हृदय समझकर अपनी निज निजी को अल्पकाल में प्रकट करे, ऐसी मंगल भावना।